पृष्ठ संख्या 223, अध्याय 24, अजराड़ा घराना। अजराड़ा घराने का दिल्ली घराने से अत्यंत निकट का संबंध है। किम बहुना, दिल्ली घराने की शैली से ही अजराड़ा घराने का निर्माण हुआ है। दिल्ली घराने की शिष्य परंपरा बहुत बड़ी है। इनमें से दो शिष्य मेरठ अजराड़ा गांव से दिल्ली आए थे, जिनके नाम थे कल्लू खां और मीरू खां। दोनों उचित एवं पूर्ण तालीम लेकर अपने गांव लौट गए थे। वे प्रतिभावान सौंदर्य पूजक कलाकार होने के कारण उन्होंने दिल्ली घराने का यानी उस घराने की वादन शैली का डब बदलने का सफल प्रयोग किया और उनके प्रयत्नों से जो स्वतंत्र शैली विकसित हुई वही अजराड़ा शैली है। इस शैली के वैशिष्ट्य इस प्रकार हैं। पहला, कायदा। कायदा रेला में गतिमानता लाई गई। भाषा की अस्पष्टता और स्वच्छता, इन दो तत्वों से दिल्ली घराने का तबला बहुत ही प्रभावी होने के कारण तथा निकास के बारे में इस घराने का शास्त्रोक्त आग्रही मत होने से उस घराने का तबला मध्य लय में ही बजता था और बजता है। इसके विपरीत अजराड़ा घराने को लगा कि मध्य लय के प्रस्तुतिकरण में सौंदर्य विद्यमान हो तो भी वही वादन अगर शीघ्र गति से प्रस्तुत किया गया तो उस वादन में गति सौंदर्य पैदा होगा और ऐसे गति सौंदर्य का आनंद देने के लिए इस घराने के वादकों ने दिल्ली की निकास शैली में कुछ ऐसे आवश्यक बदल किए कि जिससे हाथ कहीं भी अड़े बिना कोई भी रचना शीघ्र गति में बजाना सुलभ हुआ। इस गतिमान वादन के लिए दाएं एवं बाएं पर के निकास में अजराड़ा घराने के वादकों ने महत्वपूर्ण बदल किए जो इस प्रकार हैं। पृष्ठ संख्या 224। दिल्ली घराने में जहां लगातार दो चाट के नाद निकाले जाते हैं, ऐसी रचनाओं की पहली चाट के नाद निकास में उंगली बदलकर फर्क किया गया। उदाहरण के लिए धाती धागे धीना गीना, यहाँ धीना गीना का आखिरी ना अनामिका एवं कनिष्ठा के संयुक्त मुलायम आघात से बजाया जाने लगा। पहला ना अनामिका से और दूसरा ना तर्जनी से बजाने के कारण गतिमानता लाना वादकों को सहज संभव हुआ। धिनगिन नाना गिन शब्द समूह के धीना गीना ये दोनों गूंज पैदा करने वाले न अक्षर तर्जनी से बजाने के बदले अनामिका से बजाए जाने लगे और इस एक परिवर्तन के फलस्वरूप उस वादन शैली में विलक्षण वेग के साथ स्वरमय अक्षर बजाए जाने लगे तथा यह इस शैली का एक वैशिष्ट्य बन गया। दूसरा है, अजराड़ा बाज के वादकों ने केवल तबले के निकास में ही नहीं बल्कि बाएं के निकास में भी परिवर्तन किया जो उतना ही सुंदर हुआ। दिल्ली घराने में बाएं पर के घे घे अक्षर बजाते समय पहला घे दबावयुक्त पद्धति से बजाना और दूसरा घे थोड़ा सा खुला बजाना इतना ही मंजूर था। उस प्रकार दिल्ली घराने में घे अक्षर घिसाव काम और दबाव काम दोनों के संयुक्त प्रयोग से बजाना अवैध माना जाता था और ऐसे वादन को नाक भौं सिकोड़ा जाता था। इसके विपरीत अजराड़ा घराने की इस दबाव और घिसाव के कामों से बाएं में मीड़ युक्त घे बजाने की पद्धति से एक अत्यंत विलक्षण सौंदर्य निर्माण होने लगा। इस मीठे तैयार घे घे के प्रयोग के साथ तबले पर गतिमानता का प्रयोग इस प्रकार इन दो स्वर माधुर्य एवं गतिमानता सौंदर्य तत्वों में से श्रोताओं को एक निराली शैली की प्रतीति होने लगी। दूसरा, दिल्ली घराने के बहुतांश रचनाएं खासकर तीन ताल में और विशेषतः चतरस्र जाति में बांधी गई हैं। इसके विपरीत अजराणा के उस्तादों ने उन रचनाओं को ड्योढ़ी लय में ऐसे सजाया कि उससे वे रचनाएं संपूर्णतः एक स्वरूप वाली ही भासमान हुई। इस प्रकार रचना की जाति रूप में परिवर्तन करके, दाएं और बाएं के निकास में फर्क करके अजराड़ा के उस्तादों ने अपनी निजी स्वतंत्र वादन शैली का निर्माण किया। तीसरा, अजराड़ा घराने में और विशेषतः उस्ताद हबीबुद्दीन खान साहब के वादन में कायदे के प्रस्तुतिकरण में और एक निराले ही तंत्र का अवलंब किया गया, और वह तंत्र है कायदे के प्राथमिक प्रस्तुतिकरण में डगमगाने वाली लय रखकर कायदा प्रस्तुत करना। पृष्ठ संख्या 225। अधिक स्पष्टीकरण के लिए हम नीचे के कायदे का एक उदाहरण लेते हैं। धाआ घीड़ नग धीन धागे तीट धागे न धात्रक धीना गदी गन धीन धागे तीट धागे न गेधीन धागी न धात्रक तीन कतिकन। और काल, उपर्युक्त कायदे में भरी के कायदे की रचना का भाग क्रमशः 1, 2, 3 की डगमगाती चाल से बजाकर उन भागों को तीन मात्राओं में समाप्त करने के बदले 3.25 मात्राओं तक ले जाना और चौथी मात्रा का भाग धीना गदी गन धीना गदिन पौन मात्रा में बजाकर काल के ताआ कीट तक से आरंभ करना। इस तंत्र का उपयोग करके श्रोताओं में चैतन्य निर्माण करना भी अजराणा का वैशिष्ट्य मानना पड़ेगा। चौथा, अजराणा घराने में खाली दर्शक बायां दिल्ली घराने की ही तरह मुट्ठी बंद किए हाथ से बजाया जाता है और के अक्षर को प्रधान अक्षर बनाकर उसे तैयारी में बजाकर अलग सौंदर्य पैदा किया जाता है। उदाहरण के लिए, धा धा कत्ता घीन तीन कत्ता घीन तीन कत्ता कत्ता घीन तीन कत्ता धीन तीना कीना। इस कायदे में खड़े अक्षर के से और के विस्तार में से एक अनोखा सौंदर्य निर्माण करने की खासियत इस घराने में पाई जाती है। पांचवा, दिल्ली घराने में कायदे के जो शब्द भरी प्रक्रिया में बजेंगे वे ही शब्द खाली प्रक्रिया में भी बजते हैं, किंतु अजराड़ा घराने में रचना की खाली बजाते समय भरी में आए हुए शब्द प्रयोग किए ही जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। इस घराने में कायदे की खाली लेते समय उसे अलग ही शब्दों से आरंभ करने की एक सुंदर पद्धति है। उदाहरण के तौर पर, घीना धागे न धात्रक धागे न धात्रक धाती धा घीन तीना की न ताके तीर कीट धीना धागी न धात्रक धाती धा घीन तीना की न तीन तीना की न ताके तीर कीट तकी तीट ताकित्रक तीना किड़नक तिरकिट तकता तिरकिट धीना धागे न धात्रक धाती धा घीन धीना घीन। ऊपर लिखे हुए कायदे में काल में कीना तकीन तात्रक तकीन न करके तीन तीना कीन ताकि तीरकीट शब्द समूह से काल दर्शाया गया है। छठवां, अजराड़ा वालों ने काल को अलग दिखाने की यह जो नावीन्यपूर्ण पद्धति शुरू की उसका उद्गम उक्त घराने के वादकों के शेरो शायरी के शौक में निहित है। अजराड़ा घराने के वादक अपने कायदों को शायरी समझते थे और शायरी के अंत्य यमक और उपांत्य यमक का प्रत्यक्ष काव्य का खेल वे अपने तबले की रचनाओं में प्रभावपूर्ण ढंग से कर दिखाया करते थे। उदाहरण के लिए एक उर्दू गजल को लें, पृष्ठ संख्या 226। उम्र जलुओं में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर सबे गम की शहर हो ये जरूरी तो नहीं, आँख हर बात पे तर हो ये जरूरी तो नहीं, दिल पे हर गम का असर हो ये जरूरी तो नहीं। ये जरूरी है कि साकी पे हो सबकी नज़र, सब पे साकी की नज़र हो ये जरूरी तो नहीं। ऊपर की गजल में पांचवी पंक्ति में ये जरूरी है शब्द अंत्यक यमक न होकर आरंभ में आता है। इस प्रकार रदीफ काफिया को तबले में भी उल्टा घुमाने की बातों को प्रत्यक्षतः तबले की रचना के विस्तार के माध्यम से अभिव्यक्त करने का यशस्वी प्रयोग इस घराने के वादक किया करते थे, और इस विचार का उदाहरण निम्नलिखित है। इसमें मुद्दे क्रमांक 5 में दिखाए गए हैं। कायदे में काफिया रदीफ की उलट पुलट की जाती है। घेना धागेन धात्रक धागिन धात्रक धातिधा गिन धीना गेना, ताके तीरकीट घेना धागेन धात्रक धातिधा गिन तीना केना, तात्रक ताकेन तात्रक तातिता किन तीना किन कीना ताकेन घेना धागेन धात्रक धागिन धात्रक धातिधा घिन धीना घिन। ऊपर दिए गए पलटे में पहली पंक्ति में क्रम 2-3-4 के शब्द समूह तीसरी पंक्ति में क्रम 1-2-3 की जगह पर पलटा दिए हैं, और तीसरी पंक्ति का क्रम 4 का खाली युक्त शब्द समूह चौथी पंक्ति के क्रम 1 की जगह पर भरी के रूप में लाया गया है। इस प्रकार के पलटे में हमें उस घराने की शायरी के प्रति दिखने वाली लगन और सौंदर्य दृष्टि की अनुभूति होती है। 7वां, अजराणा घराने के तबला वादकों पर ताशा वादन का प्रभाव था। इस घराने के लोग बिल्कुल पहले संभवतः ताशा बजाते होंगे। कहा जाता है कि उस्ताद हबीबुद्दीन खान साहब मेरठ में मुहर्रम के ताबूत निकलते समय स्वयं ताशा बजाया करते थे, और उनके ज्येष्ठ उस्ताद उस समय ढोल बजाया करते थे। यह किस्सा महत्वपूर्ण नहीं है। ताशे की किनार पर छड़ी मारने से जो आवाज़ की पुनरावृत्ति होती है, उस प्रकार की ध्वनियाँ गतिमान लय में निकालने की अजराणा घराने की निकास पद्धति है। फलतः ताग धिन नानागिन धिन धीनागिन इत्यादि शब्द सीमा की लय में बजाते समय अजराणा घराने के वादन में ताशे के निकास का आभास होता है। 8वां, दिल्ली घराने के निकास पद्धति में प्रमुखतः दाएं और बाएं पर दो उंगलियों का इस्तेमाल होता है। इसके विपरीत अजराणा घराने के वादक दोनों हाथ की तीनों उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली घराने में कायदे के खंड 4+4 मात्राओं के होते हैं, और कई बार वे 3+2+3 ऐसी मात्राओं के भी हुआ करते हैं। ऐसे ही खंड अजराणा की रचनाओं में भी होते हैं, परंतु अजराणा घराने में 4:1/2 और 3:1/2 मात्राओं के खंड करके उस रचना को प्रस्तुत किया जाता है तथा उसका विस्तार किया जाता है, तथा इन नवरचित खंडों के कारण उस रचना के विस्तार को एक अलग ही मोड़ प्राप्त होता है, अर्थात वह सुंदर ही होता है।